नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से इस पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रोकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।